लेकिन तभी अरमान की गहरी और भारी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मुझे उस एंटीडोट की जरूरत नहीं है ध्रुव। अरमान के इन चंद शब्दों ने जैसे वहां मौजूद हर इंसान के पैरों तले से जमीन खिसका दी। दादाजी की आंखें फटी की फटी रह गईं और नानी माँ ने कांपते हाथों से अपना मुंह ढक लिया। सबकी नजरें सवाल बनकर अरमान की ओर मुड़ गईं। अरमान, जो अब तक किसी मूर्ति की तरह शांत बैठा था, धीरे धीरे अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वो पुराना ठंडापन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो सिर्फ पुराने अरमान में हुआ करती थी। ध्रुव ने हताशा में अपना सिर पकड़ लिया और हैरानी से आहान की आंखों में देखा। वहीं आकाश, सुमित भी हैरानी से अब अरमान के चेहरे की ओर देखने लगे। सब एक साथ लाइन से खड़े होकर अरमान के चेहरे को लगातार घूर घूर कर देख रहे थे। अरमान की नजरें बारी बारी से सब पर जा रही थीं। तभी सुमित और आकाश लगभग एक साथ बोले, अरमान, हम सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। जैसे ही आकाश ने ये कहा, कहीं ना कहीं सभी लड़कियां भी एक साथ इकट्ठा हो गईं। रश्मि ने थोड़ा सा माहौल देखकर संकोच से कहा, क्या हम जो समझ रहे हैं क्या वही सच है? अभिमान जी ने भी सवाल किया। एक एक करके सब अरमान को देखने लगे। आहान तो खुद को रोक ही नहीं पाया, वो जल्दी से जाकर अरमान से लिपट गया और बोला, इसका मतलब अरमान भाई की यादें वापस आ गई हैं। जैसे ही उसने हिलते डुलते लगभग चीखते हुए ये कहा, सबके चेहरे हैरानी से भर गए। आहान खुशी से चिल्लाया, ये मेरे अरमान भाई वापस आ गए, इसका मतलब उनकी यादें सच में लौट आई हैं, और जो कुछ भी हुआ वो सब उनकी मर्जी से ही हुआ है, वरना भाभी बिना अरमान भाई की परमिशन के उस डाक विला में जाने के बारे में कैसे सोच सकती थीं। इसका मतलब अरमान भाई की यादें बहुत पहले ही वापस आ चुकी थीं। जैसे ही ये कड़ियां आपस में जुड़ने लगीं, सबके चेहरों पर हैरानी और गहरी होती चली गई। दादाजी तुरंत उठे और कांपते होठों के साथ अरमान का चेहरा छूने की कोशिश करने लगे। उनकी आवाज भर्रा गई, क्या वाकई हमारा अरमान ठीक हो चुका है? सब अलग अलग तरह के भाव लेकर आंखों में नमी लिए अरमान की ओर देखने लगे। नानी माँ भी खुद को रोक नहीं पाईं, वे सीधे जाकर अरमान से लिपट गईं और रोते हुए बोलीं, दामाद जी। ये कहते ही नानी माँ फूट फूट कर रोने लगीं। उधर अरमान की आंखें बार बार आस्था पर टिक जा रही थीं, क्योंकि अरमान सिंघानिया ने अभी तक सबके सामने पब्लिक में अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं किया था। उसने अब तक ये भी नहीं बताया था कि उसकी यादें पूरी तरह वापस आ चुकी हैं। आकाश, सुमित सभी हैरानी से भरे हुए थे। अविनाश भी बेकाबू होकर आगे बढ़े और अरमान को गले लगा लिया। उसी वक्त अबीर कन्फ्यूजन में अरमान को देखकर बोला, लेकिन ये सब हुआ कैसे? अगर मिस्टर सिंघानिया को यादें आ गई थीं तो इन्हें सब कुछ छुपाने की क्या जरूरत थी, और ये इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? आपको अंदाजा भी है हम लोगों को कितना डर लग रहा था, आपने बटरफ्लाई को कितना ज्यादा रुलाया है। मिस्टर सिंघानिया, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अगर आपकी यादें वापस आ गई थीं तो आपको इस तरह से मेरी बटरफ्लाई को तड़पाना नहीं चाहिए था। जैसे ही अबीर के मुंह से एक बार फिर बटरफ्लाई शब्द निकला, अरमान ने तिरछी गर्दन करके अबीर को देखा। अबीर के दांत आपस में बजने लगे। वो तुरंत अपना गला साफ करते हुए बोला, मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी मिस्टर सिंघानिया, कम से कम सच तो बता देना चाहिए था। तभी आस्था ने हल्की नमी भरी आवाज में कहा, हमें सब सच पहले से ही मालूम था। जैसे ही आस्था ने ये कहा कि उसे अरमान की यादों का सच पहले से मालूम था, सबके कान खड़े हो गए। सब हैरानी से आस्था को देखने लगे और सवालों की बौछार उसी की ओर मुड़ गई। अरमान के चेहरे पर एक धीमी रहस्यमयी मुस्कान आई। उसने एक नज़र आस्था की ओर देखा, जिसकी आंखों में गर्व साफ छलक रहा था। अरमान ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी यादें वापस आ चुकी हैं, बहुत पहले ही। सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जिसे चीर पाना मुश्किल था। अरमान ने अपने मुंह से इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। अब तो सभी ऐसे हो गए थे मानो कि सभी को साफ साफ सांप सूंघ गया हो। अविनाश लड़खड़ाते हुए आगे आया, क्या तुम्हारी यादें वापस आ गई हैं? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें कुछ याद नहीं, तुम तो हम सबको अजनबी समझ रहे थे, ये सब क्या है अरमान? अरमान ने अपनी जेब में हाथ डाले और शांत भाव से बोला, हाँ, मेरी याददाश्त वापस आ गई थी, लेकिन राजवीर सम्राट जैसे दुश्मन को खत्म करने के लिए मेरा बीमार रहना जरूरी था। उसे लगना चाहिए था कि मैं कमजोर हूँ, ताकि वो अपनी चाले चले और मैं उसे उसके ही खेल में मात दे सकूँ। आस्था ने आगे बढ़कर अरमान का हाथ थामा और सबकी ओर देखकर कहा, अरमान जी और मैंने ये सब मिलकर प्लान किया था। जब हमें पता चला कि प्रियंका दीदी डाकविला में है, तो हमें पता था कि हम बिना किसी ठोस प्लान के वहाँ नहीं जा सकते। अरमान जी ने ही मुझे गाइड किया कि कैसे मारिया दीदी की मदद से वहाँ नज़र रखनी है और कैसे सही वक्त पर हमला करके दीदी को बाहर निकालना है। ये सुनकर आहान के सब्र का बांध टूट गया। वो उछल कर बीच में आया और हाथ नचाते हुए बोला, ओ भाई साहब, ये क्या चल रहा है? मतलब यहाँ प्रोमैक्स लेवल की प्लानिंग हो रही थी और हमें भनक तक नहीं लगी। भाभी, आपने मुझे भी नहीं बताया, मैं आपका सबसे फेवरेट टेवर हूँ ना, और भाई आपने ध्रुव और मुझे भी बाहर रखा, हद है यार। सुमित ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। सच में अरमान, ये बात बहुत बड़ी थी। हम सब यहाँ तुम्हारी सलामती के लिए दिन रात एक कर रहे थे। वंशिका ने अपनी पूरी रिसर्च लगा दी वो एंटीडोट बनाने में, और तुम्हें सब याद था? आकाश ने सिर हिलाते हुए कहा। ये ठीक नहीं था अरमान, हम एक परिवार हैं। इतना बड़ा रिस्क तुम दोनों ने अकेले क्यों लिया? अगर डाकविला में कुछ हो जाता तो? ध्रुव तो जैसे सदमे में था। उसने अरमान की ओर देखा और रुंधे हुए गले से बोला, भाई आपने मुझ पर भी भरोसा नहीं किया। मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ और आपने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि आप मुझे सच बता सकें। मैं पागलों की तरह उस एंटीडोट के पीछे भाग रहा था और आप सब जानते हुए भी चुप थे। हॉल में अब शिकायतों का शोर था। हर कोई अपनी जगह सही था, उनकी फिक्र जायज थी, लेकिन इन सबके बीच दादाजी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो धीरे धीरे चलकर अरमान के पास आए। अरमान ने जैसे ही दादाजी को देखा, उसका रूढ़ अंदाज पल भर में पिघल गया। दादाजी ने कांपते हाथों से अरमान का चेहरा पकड़ा और रोते हुए बोले, तू ठीक है ना मेरे बच्चे, तुझे सब याद है? अरमान ने झुककर दादाजी के हाथ चूमे और धीमे से कहा, हाँ मुझे सब याद है, आपका प्यार, सब कुछ। तभी अरमान के पिता अभिमान, जो अब तक खामोशी से कोने में खड़े सब देख रहे थे, आगे बढ़े। उनकी आंखों में पिता का गर्व और बरसों का इंतजार साफ दिख रहा था। उन्होंने बिना कुछ कहे अरमान को अपनी बाहों में भर लिया। एक बाप और बेटे का वो आलिंगन इतना इमोशनल था कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। अभिमान ने अरमान की पीठ थपथपाते हुए कहा, मुझे पता था मेरा बेटा इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। तूने बहुत बड़ा जोखिम उठाया अरमान। अरमान ने अपने पिता के गले लगकर अपनी आंखें मूंद ली। कुछ पलों के लिए वो डाकविला का खौफनाक मंजर, राजवीर की दुश्मनी और दुनिया की सारी परेशानियां भूल गया। लेकिन अरमान तो अरमान था। जैसे ही वो अपने पिता की पकड़ से अलग हुआ, उसका वही पागलपन फिर से उसकी आंखों में लौट आया। उसने कमरे में मौजूद किसी भी इंसान की ओर नहीं देखा, न ध्रुव की शिकायतों का जवाब दिया, न आहान के मजाक पर हंसा। उसकी ठंडी, गहरी और जुनूनी नजरें सिर्फ एक ही शख्स पर टिकी थीं, आस्था। वो धीरे धीरे चलकर आस्था के पास पहुंचा। आस्था उसे देख रही थी। उसकी आंखों में अरमान के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। अरमान ने सबके सामने बिना किसी की परवाह किए आस्था की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी ओर खींच लिया। पूरा हॉल फिर से शांत हो गया। आहान ने धीरे से ध्रुव की कोहनी मारी और फुसफुसाया,
देख ले भाई, दुनिया इधर की उधर हो जाए, भाई की याददाश्त लौट आए, पर इस बंदे का फोकस कभी नहीं हिलता। इसके लिए पूरी कायनात सिर्फ भाभीज है। अरमान ने आस्था के चेहरे के पास झुककर बहुत धीमी आवाज में कहा, जो सिर्फ आस्था को सुनाई दी, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई आफत। अगर तुम्हें जरा भी खरोच आती तो मैं उस डाक विला को राख कर देता। अरमान के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर एक पल के लिए आस्था सहमी सी रह गई थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो अरमान का पुराना पागलपन लौट आया हो, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजा कर रखी थी और सबके सामने अरमान का जो करीब हो रहा था उसे कुछ खास नहीं लगा। उसने खुद को थोड़ा सा उससे दूर किया। अरमान को देखते हुए वो बोली थी, हम बिल्कुल ठीक हैं जी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमने बिल्कुल वैसे ही किया है जैसा चाचा ने हमें कहा था। वहीं रौनक, राधिका और बाकी लड़कियां फौरन अरमान के गले से लग गई थीं। सच में अरमान भाई, आपको बिल्कुल ठीक देखकर आप सोच भी नहीं सकते कि हमें कैसा लग रहा है। हमें तो इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि आपकी यादें शायद थोड़ा बहुत लौट आई हैं, लेकिन आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। आप सोच नहीं सकते हमें कितना अच्छा लग रहा है। ये कहते हुए सभी लड़कियों की आंखें भर आई थीं। अरमान ने बड़े प्यार से सबके सिर पर हाथ रखा और मानो कहना चाह रहा हो कि तुम लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा हमदर्द और तुम्हारा सबसे बड़ा मुहाफिज तुम्हारे साथ मौजूद है। फिलहाल वहां खड़े वीर के लिए तो ये सारी बातें काफ़ी हद तक एक मिस्ट्री की तरह लग रही थीं। वो एक बार फिर से कदम बढ़ाते हुए अरमान के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला था, अरमान भाई, समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी फीलिंग कैसे जाहिर करूं, हंसूं, रोऊं या मुस्कुराऊं। आप नहीं जानते कि आपका ठीक होना देखकर मुझे कैसा महसूस हो रहा है। प्लीज़ अरमान भाई, आप कुछ बताइए ना, ये सब कैसे हुआ? और हाँ भाई, आपकी यादें आज एग्जैक्टली कब आईं? अपनी यादें आने के बाद सबसे पहले आपने किसे बताया? प्लीज़ प्लीज़ अरमान भाई, मैं सच में ये सब जानने के लिए बहुत बेचैन हूँ। मैं सारी बातें अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ। आखिरकार आपकी यादें कब लौट कर आईं? वीर के लगातार सवालों की बारिश सुनकर अरमान ने धीरे से अपना सिर पकड़ लिया था। एक पल के लिए वहां खामोशी छा गई। वीर अचानक चुप हो गया। वो सोचने लगा कि कहीं उसने अरमान भाई के अंदर का दर्द तो नहीं जगा दिया। वो तुरंत ही दो कदम पीछे जाकर खड़ा हो गया। फिलहाल वो अब भी अरमान को ध्यान से देख रहा था। जिस हाथ से अरमान ने आस्था का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब किया था, उसी बात को सोचकर वीर के मन में अजीब सा ख्याल आ गया। ठीक होते ही इन्होंने आस्था पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया और उसे अपने करीब कर लिया। मैं जानता हूं कि आस्था पर पूरा हक इन्हीं का है, लेकिन मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये सोचते हुए वीर को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उसे डर था कि शायद अरमान की यादें पूरी तरह लौट ही ना पाएं और कहीं वो आस्था को पूरी तरह भूल ही ना जाए। और क्योंकि वीर की अविनाश से भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, तो उसके मन में एक पल के लिए ये ख्याल भी आया कि अगर ऐसा हुआ तो शायद अविनाश को आस्था की जिंदगी में जगह मिल जाए।
ये सोचकर उसे थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन अंदर ही अंदर आस्था के लिए खुशी भी हो रही थी, क्योंकि आस्था की खुशी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। वो अपने पति को सही सलामत देखकर कितनी खुश थी। इसीलिए वीर ने आस्था की ओर देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया था। फिलहाल वहां की बातें सुनकर और सबको देखकर आस्था भी हल्का सा मुस्कुरा दी। वो बड़े ही प्यार से अरमान को देखते हुए बोली थी, थैंक यू सो मच जी, आप एक बार फिर से अपनी जिंदगी में लौट आए। आप नहीं जानते कि आपके बिना हमारी जिंदगी कितनी ज्यादा परेशान और बेरंग हो गई थी। ये कहते कहते आस्था की आंखें भर आई थीं, लेकिन तभी अरमान ने आस्था की आंखों में आंसू देखे और तुरंत ही सख्त चेहरे के साथ बोला था, बटरफ्लाई, अफकोर्स तुम्हारी आंखों के आंसू तुम्हारे गालों तक नहीं आने चाहिए। अरमान की ये बातें सुनकर एक पल के लिए आस्था सहम सी गई थी।